जो मौजू था कि इंसान के अंदर मौजूद जो एक दर्द है और एक तकलीफ का एहसास है, ये एहसास है किस किस्म का और किस किस्म के एहसास इसके अंदर पाए जाते हैं, कितने किस्म की ये तकलीफें या एक दर्द, हकीकत में वो लफ्ज दर्द की वजह से हम इसको मनफी तरीके से ना देखें बल्कि ये मुस्बित है, क्योंकि मेडिकल में साइंस में भी जो दर्द है वो किसी खराबी की निशानदेही है के लिए होता है। अगर ये दर्द और तकलीफ इंसान महसूस ना करे तो उसके अंदर जो बॉडी में जो प्रॉब्लम्स ईजाद हुए हैं वो जो है मालूम नहीं हो सकेगा, कि वो अंदर से खोखला होता जाएगा और उसे खुद भी मालूम नहीं होगा। लिहाजा एक सोसाइटी में और एक माशरे में इसी तरह यही
जी
दर्द जो कि जिस्मानी है, इसको रूहानी, मानवी, हत्ता फिक्र, सोच, अकीदा, माशरे में उसका करेक्टर, उसका उसकी पर्सनल लाइफ में उसका करेक्टर, अगर उसमें जो खराबियां हैं, जो मनफी पहलू हैं, उसके बारे में अगर पता न चले इंसान को, उस दर्द को महसूस ना करे, तो फिर बेहतरी नहीं आ सकती है। लिहाजा ये एक कुरान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक मुकद्दस चीज के तौर पर जो है पसंद किया गया है। मसलन पेज नंबर 95 में आए तो कुरान मजीद की कुछ आयात को बयान किया है जिसमें हुजूर पाक के हवाले से, 94 में मसलन सूरह काफ की आयत नंबर 6 बयान किया कि अगर ये लोग इस बात को न माने तो शायद तुम मारे अफसोस के उनके पीछे अपनी जान ही दे डालो। लोकुन तबाखिन जो कहा कि कुरान मजीद में है, कि यानी हुजूर पाक क्योंकि तकलीफ महसूस कर रहे हैं कि लोग गुमराही की तरफ जा रहे हैं, इस गुमराही के दर्द को वो महसूस कर रहे हैं, यानी ये बड़ा मुश्किल काम होगा आज के दौर में बहुत से लोगों को अंडरस्टैंड करना कि इस तरह की भी कोई इंसान के अंदर सोच आ सकती है। क्योंकि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं यूरोप के अंदर, यहाँ पर इन चीजों की और किस्म की इंटरप्रिटेशन हैं, डिस्कस करेंगे हम आगे जाकर। यानी ये तकलीफ कि कोई दूसरा गलत रास्ते पे जा रहा है या वो कोई गलत काम कर रहा है, उसकी तकलीफ एक दूसरा इंसान महसूस करे और उस महसूस करने के बाद उसको बेहतर करने के लिए, ठीक करने के लिए, उसकी क्या कहते हैं तकलीफ को या उसके प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए खुद को तकलीफ में डाले, ये हाई क्वालिटी की एक सिफत है जो रसूलों और अंबिया के अंदर और खासकर खातमुल अंबिया में कुरान मजीद इसी को बयान कर रहा होता है हमारे लिए। फरमाया आप अपनी जान को क्या कहते हैं खतरे में डाल रहे हैं, मुश्किलात में डाल रहे हैं ताकि दूसरे लोगों के लिए अच्छाई पैदा हो, और आपको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि दूसरे गलत रास्ते पे जा रहे हैं। फिर एक और जगह पे सूरह ताहा में, हमने तुम पर कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम इस कदर मुशक्कत उठाओ, मगर जो शख्स खुदा से डरता है उसके लिए नसीहत है, कहने कि इतनी ज्यादा तकलीफ में मत डालो खुद को। ये देखें जब दर्द होता है ना, इंसान दूसरों के लिए खुद को मुश्किल में डालता है, ये बहुत हाई क्वालिटी की सिफत है राह खुदा में। खासकर मुझे बाज औकात बाज लोग कहते हैं कि आगा साहब आप क्यों इतना वो करते हैं फलां काम के लिए, यहाँ ये ही हो सकता है, आप इससे आगे जाने की कोशिश ना करें, इतना ही यहाँ पॉसिबल है। यानी एक्स्ट्रा जो है जाकर आपको काम करने की जरूरत नहीं है, जितना है बस इतना कर दें, छोड़ दें बाकी चीजों को। फिर एक और आयत सूरह तौबा की है कि जिसमें फरमाते हैं तुम ही में से हमारा एक रसूल तुम्हारे पास आ चुका है, उस पर शाक है कि तुम तकलीफ उठाओ, यानी उस पर शाक है यानी उसे बहुत बर्दाश्त नहीं होता कि तुम लोग तकलीफ उठाओ, और उसे तुम्हारी बेहतरी की फिक्र है, वो ईमानदारों पर हद दर्जे शफीक है। इसको अंडरस्टैंड कैसे किया जाए, इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं बच्चे और पेरेंट्स को लेकर, औलाद और वालिदैन को, स्पेशली मदर को लेकर, माँ को। आप देखें कि बच्चा कहें कोई गलती ना करे, गलत रास्ते पे ना जाए, कोई तकलीफ उसे ना हो, इस बात पर माँ स्पेशली और वालिदैन खुद को तकलीफ में डालते हैं, बे इंतहा दर्जे पे जो है खुद को तकलीफ में डालते हैं। क्यों? इसलिए कि वो नहीं चाहते कि बच्चे तकलीफ में चले जाएं, और अगर वो देखते हैं कि वो गलत उस पे जा रहे हैं तो इनसे बेहद दर्जा तकलीफ होती है, वालिदैन टेंशन लेते हैं, वालिदैन अफसोस करते हैं, बहुत अपने आप को एक शदीद किस्म के डिप्रेस और उसमें फील करते हैं कि भाई क्यों मेरे बच्चे या बच्ची के साथ ऐसा, वो क्यों करती है ऐसा, क्यों करता है ऐसा, नहीं करना चाहिए था उसको। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन यही चीज बाहर आ जाए, एक सोसाइटी में देखे, एक आदमी दुनिया को देखे, बड़ी तकलीफ होती है दर्द में। ये जो कहा जाता है कि इमाम जमाना, हमारे अमाल की वजह से तकलीफ होती है, इमाम जमाना को किस वजह, किस किस इनवान से इसको अंडरस्टैंड किया जाए, इस इनवान से कि दर्द महसूस करते हैं इमाम जमाना। यानी जैसे वालिदैन अपने बच्चे को किसी गलत उसमें देखकर तकलीफ महसूस करते हैं और अफसोस करते हैं, और उसे निकालने के लिए अपनी जितनी एफर्ट्स है वो कर लेते हैं, खुद को मुश्किल में भी डालते हैं, और उसको यानी इसको ये छोटे पैमाने पे, ये बहुत ही एक स्मॉल सर्कल के अंदर है। अब इसी को लेके हम चले जाएं इमाम जमाने के पास, तो हम महसूस करेंगे कि हाँ कैसे तकलीफ होती है। यहाँ से यानी पेरेंट्स के बच्चों के साथ जो लगाव और मोहब्बत है वो अंसुर भी देख लें, उसको एक बड़े स्केच पे देखना है तो अइमा अलैहिस्सलाम और खासकर इमाम जमाना के हवाले से ये हम महसूस करते। अच्छा, बाज लोग ये तकलीफ महसूस नहीं करते। हम जिन सोसाइटीज में रहती हैं, इन सोसाइटीज में मदर एंड मसलन फादर और चिल्ड्रन का जो रिश्ता है वो भी एक एग्रीमेंट टाइप का रिश्ता बन चुका है। अच्छा, कहते हैं डू यू लाइक, नो नो मतलब ओके छोड़ो, भूखा रहो मेरी मेरे बला से क्या, क्योंकि तुमने कहा तुम्हें भूख नहीं लगी है, क्योंकि तुमने कहा जो है ऐसा है करना है। ये नहीं कि सब ऐसे हैं, लेकिन ये सूरत हाल बनती जा रही है। ये बहुत से हमें सोसाइटी में बहुत सी ये चीजें हमें यहाँ दिखाई देती हैं। कह रहे ठीक है तुम्हारा मसला है, तुम खुद सोल्व करो। यानी ये जो इस तरह के वर्ड्स हैं इसके पीछे क्या फिक्र आ रही है, यही फिक्र आती है कि तुम्हारा मेरा मेरा बलो पेरेंट्स ही क्यों ना हो। यानी इस हद तक इंसानी फितरत के अगेंस्ट चले गए हैं, और वो एहसास ही मरता गया जिसमें वालिदैन सेक्रीफाई करते हैं पेरेंट्स के लिए, बच्चे सेक्रीफाई करते हैं वालिदैन के लिए, वालिदैन की एक छोटी सी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बच्चे अपने आप को एक बड़ी तकलीफ में डालते हैं, या बाज़ औक़ात वालिदैन एक बड़ी तकलीफ में डालते हैं छोटे से। ये इसको आया बड़ी लेके आए एक बड़ी सोच, एक मुआशरे में एक वो इंसान जो कि मुआशरे के बाप का जैसा दर्जा रखता है उसे भी यही तकलीफ का एहसास होता है जब सोसाइटी के अंदर वो इस तरह के मसाइल देखते हैं। 95 के अंदर कहते हैं अजीजुन अलैहिमा अनितुम, यानी तुम्हारी जो है ना तकलीफें और परेशानियां उसे बहुत तकलीफ देती हैं, नागवार गुजरती हैं, क्योंकि वो तुम्हारा दर्द रखता है, तुम्हारा पैगंबर है लिहाजा तुम्हारा दर्द रखता है, तुम्हें प्रॉब्लम में देखता है तो वो प्रॉब्लम उसे होती है, वो महसूस करता है। हो सकता है बाज़ औक़ात वो आदमी जो खुद दर्द और तकलीफ में है खुद एहसास न करे, रसूलुल्लाह उसका एहसास करें। और एक जगह में कहते हैं हरीसुन, उसकी तशरीह यानी वही मिसाल दे दी जो कि वालिदैन और पेरेंट्स की मिसाल से हम डिस्कस कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि ये सिर्फ पैगंबर खुदा नहीं, इमाम अली अलैहिस्सलाम भी यही जो है दर्द रखते थे। एक एग्जाम्पल वाकया दिया है उस्मान इब्ने हुनैफ का, वो जो मशहूर वाकया है आपने सुना है कि एक ऐसी दावत पे चले गए कि वो दावत में कोई ऐसा गलत काम डायरेक्टली नहीं हो रहा था जिसको आज हम और आप हमारे और आपके क्राइटेरिया में गलत था, जैसे शराब पी रहे होते या जुआ खेल रहे थे या कोई गलत और किस्म की चीजें हो रही थी, बल्कि उस्मान इब्ने हुनैफ की गलती ये थी कि एक हाई सोसाइटी जो एलिट क्लास की इनविटेशन और दावत थी उसमें वो गए थे जिसमें फकीरों को आइसोलेट किया गया था, उनको बिल्कुल निगलेक्ट करके नजरअंदाज किया था, और सिर्फ सोसाइटी की जो एलिट क्लास है या जो 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 हाई हाई सोसाइटी है उसको वहां इनवाइट किया गया था, और प्लस जो है सिटी के गवर्नर को भी इनवाइट किया गया, और वो गवर्नर साहब चले गए और देखा कि ये तो सारी हाई फाई सोसाइटी है, इन्होंने गरीबों यतीमों हमसायों नादारों रिश्तेदारों में जो गरीब गुरबा उनको सबको नजर निगलेक्ट किया, ये पता चल गया इमाम अली को, इसको बर्दाश्त नहीं किया इमाम अली ने, कहा कि ये आपने कैसे शिरकत की, इसके अंदर ये दर्द है। इमाम अली अलैहिस्सलाम को गरीबों को लेकर मुआशरे में जो क्या कहते हैं एक तरह का जो फर्क आ रहा है, तबकाती तबकाती तकसीम हो रही है, तबकाती तौर पे डिवाइड होती है सोसाइटी, एलीट क्लास है, फिर लोअर क्लास है, अपर लोअर क्लास है, ये बर्दाश्त नहीं करते, कहते सारे इंसान एक हैं, किरदार के एतबार से देखना है वगैरह। फरमाते मुझे उम्मीद न थी तुम इन लोगों की दावत कबूल करोगे जिनके यहाँ फकीर और नादार दुत्कारे गए हों, यानी उसे निगलेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ये निगलेक्ट करना नहीं समझते। इमाम अली समझते हैं कि उनको धक्के दे के निकाल दिया है, उनको बिल्कुल ही उनको हकीर समझ के नजरअंदाज कर दिया, और सिर्फ रिच लोग और दौलतमंद लोग वहां पर बुला के, ये क्या दर्द है, ये यही दर्द है। वगैरह मौला अली इस्लाम के फायदे देखो, हम दुनियावी फायदे में देखें तो अच्छा है ना, जितने भी अमीर लोग हैं वो हमारे फेवर में आ जाएं तो फाइनेंशियल हमारी बिजनेस भी चल सकता है, कारोबार हो सकता है। देखें ना, अब आज की दुनिया के स्टैंडर्ड्स और मैयारात को देखें, स्पेशली हम जहां रहते हैं, तो उसमें तो यही है, आपके जितने असर रसूख वाले लोगों से ताल्लुकात हो जाए ज्यादा अच्छी बात है, इसलिए कि उसका फायदा हो जाएगा, गरीब गुरबा को कौन पूछता है भाई। तो ये दर्द जो है, ये जो है आज भी मतलूब है, और इंसान कामिल के अंदर ये दर्द पाए जाते हैं। ठीक है, इसका लेवल मुख्तलिफ हो सकता है, कम होना, मसलन मुझे और आपको खबर मिलती है कि, चलो मैं ये एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई पेंडी और इस्लामाबाद में और पिशावर में, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद इतने सारे मुहाजरीन आए हैं, उनमें एक बड़ी तादाद जो है मोमिन की भी है, और जो आइडेंटिफाई होते हैं अपने फेस की खास उसकी वजह से, शक्ल सूरत की वजह से, और वो गली कोचों में, फुटपाथों में, दुकानों के सामने इस सर्दी में जाके बच्चे लेके, यंग लड़कियां हैं, छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट औरतें हैं, उनमें जख्मी है, बहुत सारे बीमार हैं, बूढ़े हैं, वो सो रहे हैं और लोग गुजर रहे हैं, देख रहे हैं। अब इनमें से कुछ लोगों ने देखा तो दर्द महसूस किया, दर्द महसूस करने के बाद उन्होंने स्टेप उठाया, टेलीफोन्स करने लगे, यार ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है इस तरह जो है ना, कि इस हालत में लोग इस सर्दी में अफगानिस्तान से आए, से हो मूवमेंट शुरू कर दी, एकदम शुरू कर दिया, क्या कहते हैं उनके लिए जो कुछ कर सकते हैं करना शुरू कर दिया, अपीलें शुरू कर दी पूरी दुनिया के अंदर, ग्लोबली हम सब भी रबते कर लिए। क्या ये दर्द है? ये कौन सा दर्द है? वही मुकद्दस दर्द है। कौन सा मुकद्दस? इंसान कामिल जो अल्लाह और कुरान और अहले बैत की नजर में एक कामिल मोमिन है, उसके अंदर जो उसकी साइंस हैं, उनमें से एक साइन ये सबसे बड़ा साइन है कि वो सोसाइटी और अपने जैसे दूसरे इंसानों के लिए दर्द और तकलीफ महसूस करता है, बल्कि खुदा की हर क्रिएशन के बारे में उसके अंदर जो है एक एहसास जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और दर्द और तकलीफ उसके अंदर पाया जाता है। मौला अली अलैहिस्सलाम देखें, मौला अली अलैहिस्सलाम जो है बहुत लो लाइफ गुजारते थे, खैर उस वक्त क्योंकि सिचुएशन भी ऐसी थी, और मौला अली इस्लाम ये नहीं कि वो नहीं कर सकते थे, या ये कि वो हराम काम था इसलिए अच्छे कपड़े नहीं पहनते थे, ये बात भी नहीं है। असल मसला क्या है? फरमाते हैं शायद कि हिजाज में, सऊदी अरबिया आज के में और यमामा में ऐसे लोग हों जिन्हें एक रोटी मिलने की भी उम्मीद ना हो, और उन्हें पेट भर कर खाना भी नसीब ना हो, तो कह रहे हैं कि क्या मैं पेट भर कर सोता रहूं और मेरे आसपास में लोग भूखे भूखे पेट के रहें। कह रहे ये मुझे ये एहसास मुझे, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस्लामिक टेरिटरी के अंदर ऐसी सिचुएशन मौजूद है इकोनॉमिकली, तो कह रहे हैं कि मुझसे तो ये रहा नहीं जाता, मैं बार बार, यानी ये बार बार ख्याल आता है, देखो मैं पेट भर के खा रहा हूँ, मेरे जो है अतराफ में ये सूरत हाल है। मैं अक्सर यहाँ लोगों को भी कहता हूँ, मैं अपने बच्चों से भी कह रहा था, देखो तुम लोग जितना खाना बचाते हो ना, या जितना खाना तुम लोगों का वेस्ट होता है, ये जहन में रखो, अगर ये हम हफ्ते भर का इकट्ठा कर लें तो यमन के अंदर या और बहुत सारे मुल्कों में कितने लोग जो रात को भूखे सोते हैं उनके पेट भर जाए। अगर किसी इंसान के अंदर ये एहसास बहुत हाई लेवल पे चला जाए और कमाल व अकमल व कामिल की तरफ, इंसान कामिल की बात की टॉपिक है ना, उसमें पहुंच जाए तो उसकी सिचुएशन यही इमाम अली जैसी होगी। राहबर के बारे में ये कहते हैं कि जब डॉक्टर्स ने उनसे कहा कि अब आपको फ्रूट ज्यादा खाना चाहिए और फ्रूट काफी एक्सपेंसिव आइटम में से हो हैं ईरान में, तो सीजन वाइज तो और ज्यादा, तो कह रहे हैं कि वो अपने ऑफिस के जो खादिम हैं उनसे पूछते हैं कि मार्केट में सबसे सस्ती चीज फ्रूट में कौन सी है। तो आप अंदाजा लगा लें कि खादिम को कहते हैं कि आप सेब लेके आए, लेकिन जो सबसे सस्ते तरीन सेब है, भले वो थोड़े डैमेज भी हों, कोई बात नहीं है, वो लेके आए मेरे लिए। कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है। घर के अंदर जो है वो कारपेट, कितने पुराने जमाने की कालीन पड़ी हुई है रहबर के घर में और वही इस्तेमाल हो रहे। बेटे की शादी होती है हद्दाद आदिल के बेटी के साथ, तो उसमें यही कहते हैं, देखे मुझे गिफ्ट में ये एक चीज मिली है, एक कालीन मुझे गिफ्ट में किसी ने दी थी, मैं यही देना चाहता हूँ और ये करना चाहता हूँ। कहते हैं प्लीज आप भी ना करें, देखे सोसाइटी में ऐसे लोग नहीं है जो हमारी तरह की शादियां कर सकें, मैं और आप कर सकेंगे। हद्दाद आदिल एक अमीर आदमी है, ये क्या दर्द है भाई। अच्छा, इसका फायदा क्या होने वाला है? एक तो है ना, लोग कहें यार दुनिया के सामने ये, खुद दुनिया के सामने एक आदमी शो ऑफ करने के लिए करे तो उसकी कुछ बेनिफिट भी हो ना, फिर दुनिया परस्त आदमी दुनिया के हुसूल के लिए अगर ये हरकत करता है तो फिर उसके बाद नेक्स्ट में दुनिया भी तो उसके पास आनी चाहिए ना। चलो एक जगह पे उसने ये दिखाया, दूसरी तरफ पता चले कि उसके पास इतने महल्लात हैं, इतनी उसके पास जो है बैंक बैलेंस है, उसका इतना हाई फाई किस्म की जिंदगी है, उसके इतने तैयारे चलते हैं, उतनी शिपें चलती हैं, ये फिर इंसान को हो जाए ना कि दुनिया के पीछे किया है। वगरना मुझे ये बताएं कि इस वक्त दुनिया लेके किधर है, दुनिया वो रहबर वाली दुनिया है किधर, इमाम अली की किधर है दुनिया। चलो इमाम अली ने इधर कहा जी या मामा या हिजाज में कोई पेट भर के आदमी न सोया हो, पेट भर के खाना ना मिला हो, बगैर भूखा सोया हो, मैं कैसे खा सकता हूँ। खुद बाद में इमाम अली को क्या मिला, कहां पर इमाम अली की फिर प्रॉपर्टीज बनी, कहां पर इमाम अली की सल्तनतें बनी, बादशाहतें, महल्लात तामीर हो गए। क्या हम कहें जी यार ये ऐसे ही कहते हैं दुनिया, यार ये डिप्लोमेटिक क्या कहते हैं बिहेवियर्स है ना बाबा। खूब डिप्लोमेटिक बिहेवियर्स के बिहाइंड में कुछ चीजें होती है ना, पब्लिक को धोखा दे रहे हैं, पीछे खुफिया तौर पर कुछ फिर महल्लात होते हैं ना किसी दिन वो डिस्क्लोज होकर सामने आते हैं, किसी न किसी दिन उसका इंकशाफ होता है। इमाम अली की तो पूरी जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं आई। राबर तो अब जो है ऑलमोस्ट 100 ईयर की तरफ जा रहे हैं, तो किधर है, न बच्चों के पास है, न खुद उनके पास है, नॉर्मल लाइफ में है, तो फिर ये कौन सी दुनिया है जो हासिल करना चाहते हैं, कौन सी चीज है, मालूम होता है नहीं। ये वो दर्द है हम और आपका, क्योंकि हम और आपके लिए, क्योंकि ये चीजें बिल्कुल एक अजनबी हैं, स्ट्रेंज किस्म की बातें हैं, तो हम समझते नहीं ये शायद इसके पीछे कोई डिप्लोमेसी है, कोई बनावट है, कोई मस्नूई चीजें हैं, आर्टिफिशियली हैं सारी, ना ना ना, ये तो समझना है, ये दर्द वाकई दर्द है। तो ये मौला अली अलैहिस्सलाम, आज मैं मतलब ये कहना ये चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आइमा के साथ मुत्तसिल है, नहीं, बहुत से लोग हैं ये तकलीफ और दर्द महसूस कर। मुझे ये बताएं इमाम खुमैनी को क्या मिला है, कितने इमाम खुमैनी के क्या कहते हैं बाद में जब इमाम खुमैनी इनकलाब लेकर आए, तो ये बताएं इमाम खुमैनी के पास कोई उनके अपने कितनी जायदादें बनाई हैं, कितनी बड़ी प्रॉपर्टीज और शहर और सिटीज और वो खरीदा उसने, कितना बड़ा बिल्डर बन गया इमाम खुमैनी, कितना बड़ा सरमायादार बना, उनकी प्रॉपर्टी बिलियन ट्रिलियन किसमें है, दुनिया के पहले 10-15 अमीर लोगों में शामिल हो गया इमाम खुमैनी, तेल ऑयल जैसा मुल्क, गैस का गैस वाला मुल्क क्या लेकर गया है, कुछ भी नहीं, नथिंग। तो फिर पता चलता है ये सारी जिद्दोजहद के पीछे मेन मोटिव क्या है, मेन मोटिव यही है जो एक इंसान कामिल का दर्द है, एक इंसान कामिल को जो तकलीफ महसूस होती है, रजा शाह एग्रीमेंट करे तो वो तकलीफ महसूस करता है कि यार इन लोगों की मेहनत करेंगे मेरे काश का फल खाएंगे, वो महज से मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। शायर का एक शेर 97 में कह रहे हैं कि कहते हैं एक शायर का शेर नकल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या मैं ऐसा बन जाऊं जैसा कि एक शायर ने कहा, यानी इतना ही दर्द तेरे लिए काफी है कि तू पेट भर के सोता रहे और तेरे इर्द गिर्द के लोग भूखे लोग मौजूद हों। कहते हैं इसे कहते हैं खल्क खुदा का दर्द, टर्मिनोलॉजी जहन में रहेंगे तो आगे की डिबेट जरा आसान हो जाती है। मतलब इस दर्द की कैटेगरीज हो सकती हैं, दूसरे अल्फाज में असल में ये कहना चाह रहे हैं, खाल के खुदा का दर्द, और इसी तरह जो है जिसको हुब्बे इंसानियत, इंसानों से इंसानियत से मोहब्बत करना, जैसे कि ये हमारे यहाँ भी है, इंसानों यानी हुब्बे इंसानियत यानी इंसानों से मोहब्बत, जो कि तमाम वैल्यूज की मदर है, मदर ऑफ वैल्यूज है, आजकल भी कहा जाता है ना कि मदर ऑफ वैल्यूज या मदर ऑफ कदरें क्या है, वो इंसानी इंसानों से दर्द है, इंसानों से मोहब्बत करना है। थोड़ा सा इंशाल्लाह जब आगे हम बढ़ेंगे, क्योंकि इबारत पढ़ना आज नहीं है, तो इसके अंदर एक फिर बहस आती है जो दर्द है, फिर ये दर्द सिर्फ इंसानियत से दर्द भी है, फिर इसके अंदर जब इंसानियत का पहलू आएगा तो फिर एक बहस आती है वही जो अखलाकियात में भी हम करते हैं, वो है खुद शिनासी और खुदा शिनासी, फिर ये दर्द भी जो है कैटेगराइज में चला जाता है, इंसानों से मोहब्बत फिर खुदा से मोहब्बत, क्या खुदा से मोहब्बत के बगैर इंसानों से मोहब्बत पॉसिबल है, क्या इंसानियत का एहसास रखना खुदा के एहसास के बगैर उसकी क्या कोई हैसियत और मकाम है या नहीं है। ये जो इस तरह की गुफ्तगू है ये बहुत ही अहम है आजकल के दौर में, क्योंकि मसलन फर्ज करें कि मदर टीसा का जो दर्द था, अगरचि वो एक क्रिश्चियन खातून थी और खुदा पे भरोसा रखती थी, या बहुत से और लोग हैं जो कि दर्द इंसानियत रखते हैं या इंसानियत के लिए काम आने की बात करते हैं, लेकिन इसके बीच में जो मेन मोटिव होता है उसमें कोई इलाही अंसुर नहीं हो जा नहीं पाया जाता, कोई किसी किस्म का जो है बेग पर खुदा अल्लाह उसकी तालीमात ये चीजें नहीं होती, बल्कि कहते हैं मिनहाय से इंसान, मैं दूसरे इंसानों को तकलीफ में देखता हूं तो लिहाजा मुझे जो है वो एहसास बनता है, एहसास मेरे अंदर आ जाता है, और इंसानी जो हमदर्दी का एहसास है, इंसान होने का एहसास है, ये एहसास जो है मुझे दूसरे इंसानों की तकलीफ का दर्द पैदा करता है, और उस दर्द को खत्म करने का तरीके कार यही है कि मैं फिर उन इंसानों की खदमत की तरफ बढ़ जाता हूँ, तो इसी के अंदर फिर कई और चीजें भी निकल आती हैं। अच्छा ठीक है, तो आप जो मुख्तलिफ मुल्कों में जाके बम्बारमेंट करते हैं और 1,000-2,000 लोगों को मारते हैं, तो उसके पीछे आपका ये दर्द था कि आप 2-3 करोड़ लोगों को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इसके पीछे कौन सा दर्द और कौन सा जज्बा कारफरमा है आपकी इंसानियत का, मिनहे से इंसान के। खैर ये बहसें हम आगे करेंगे, पेज नंबर 102 पे हम आए हैं, जो थर्ड फोर्थ नशस्त है शहीद मुतहरी की, जिसका टाइटल है खुद शिनासी और खुदा शिनासी, यानी इसकी हम जो है तमहीद हम पढ़ेंगे। कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 45 पढ़ा, जिसका तर्जुमा है, और कड़े वक्त में सब्र और नमाज का सहारा, वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात वगैरह है, वह अलबत्ता नमाज धोबर तो है मगर फरमान बरदारों पर नहीं है, नमाज यानी एक बोझ महसूस करते हैं कुछ लोग नमाज को लेकर, लेकिन वो जो ताबेदार लोग हैं खुदा का वो बोझ महसूस नहीं करते, जो ताबेदार नहीं है उनके लिए बोझ है। यहां से दोबारा वो इंसान कामिल की जो सिफात हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, जो क्वालिटीज हैं, जो वैल्यूज उसके अंदर होने चाहिए उसको डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एक और जाविये से आ रहे हैं और तरीके से एक बहस को डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसको लिंकअप करते हैं इलाही तालीमात खुदा की तालीमात से, इसलिए वो इस दरवाजे से आ रहे हैं। कह रहे कि हमेशा इंसान के पास एक डोर है, वो मानवीय स्पिरिचुअलिटी और रूहानियत का जो दरवाजा है वो दरवाजा है, कहते हैं कि ये एक ऐसा डोर है, एक ऐसी विंडो है या दरवाजा है जिससे इंसान दुनिया में एंट्री करता है, जैसे कि मसलन कहते हैं कि अब जो कदीम हमारे उलमाए अखलाक हैं, जिसको इल्मुल नफ्स भी कहा जाता है, इल्मुल अनफुस यानी अब खुद को पहचानने का इल्म, कह रहे हैं कि उसमें भी, और आज के जो उलमा हैं वो भी जो है इसकी तरफ इशारा करते हैं। यहाँ पर मौलाए कायनात का एक जुमला कोट करते हैं, फरमाते हैं कि जो शख्स अपनी हस्ती को पहचान लेता है वो अपने परवरदिगार को पहचान लेता है। वही जो मशहूर हदीस है, मन अराफा नफसहू फकत अराफा रब्बा, कह रहे हैं कि कुरान मजीद ने उसूली तौर पर इंसान के लिए दुनिया की तमाम चीजों के मुकाबले में एक अलग दरवाजा, एक अलग डोर ओपन किया है। क्यों? इसलिए कि इंसान एक इंडिपेंडेंट और मुस्तकिल जो है ना एट्रीब्यूट्स, खासियतें, क्वालिटीज रखता है। मसलन कुरान मजीद की एक आयत को लेकर आया, फरमाया कि देखें, खुदा फरमाते हैं कि हम अपनी जो साइंस हैं और निशानियां हैं वो हम आपको आपके सराउंड में हम दिखाएंगे आपको, और अरे खुदा की निशानी मतलब खुदा की कुदरत की, उस खुदा की अजमत की निशानियां, और एक और कह रहे हैं कि खुद उनके अंदर भी हम दिखाएंगे। ये जो निशानियां हैं उनके सराउंड में भी होंगी और उनके अंदर भी होंगी, यानी आफाक में भी, यानी यही जो दुनिया है जिसको हम तबीई दुनिया या नेचुरल दुनिया कहते हैं, हालांकि नेचर का लफ्ज जो है बहुत तकलीफदेह है बिहाइंड द सीन। अभी एक प्रोग्राम भी आने वाला है, हमारे दो मोमिन जो है जिन्होंने पीएचडी की हुई है उनकी तरफ से एक लेक्चर है इंग्लिश में, उम्मीद है कि ज्वाइन करेंगे आप लोग। मैं उनसे भी यही कह रहा, उनके ग्रुप में कह रहा था, ये नेचर, जब आप नेचर कहते हैं ना तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो क्रिएशन ऑफ अल्लाह है ये मफहूम मर ना जाए कहें पर। नेचर बेनवान तबीयत के आप डिस्कस करें, लेकिन जहन में रखें नेचर मीन्स द नेचर समथिंग क्रिएटेड फ्रॉम अल्लाह सुबहान व तआला, यानी ये नेचर खुद से नहीं है, क्रिएशन है। लिहाजा कह रहे हैं कि हम खुदा की जो मखलूकात हैं उसमें भी दिखाएंगे, सराउंड में इंसान यही नेचर में, और खुद लोगों के अंदर भी हम निशानियां दिखाएंगे। अच्छा, आफाक और अनफुस दो मेन असल में टर्मिनोलॉजी यूज हुई हैं जहां पर खुदा की खुदाई नजर आती है, खुदा की कुदरत नजर आती है। अगर ना देखें खुदा अलीम है तो मुझे कैसे पता चलेगा, मैं अलीम को कैसे जानूं? खुदा मुदीर व मुदब्बिर है यानी द बेस्ट मैनेजमेंट करने वाला, यानी खुदा से बढ़कर कोई बेहतरीन मैनेजमेंट नहीं जानता, मुदीर व मुदब्बिर है मतलब सिफात है खुदा में, खुद मुझे कहां उसकी मैनेजमेंट नजर आएगी? तो कोई चीज हो ना जिसके थ्रू मैं जज कर लूं कि बाबा ये अल्लाह है और उसकी सिफत मैनेजमेंट है तो ये है, ये उसकी सिफत इल्म है तो ये है, वो रहीम है तो ये है, तो कह रहे हैं कि ये आपको मिल जाएंगी उसकी क्रिएशन के अंदर, और क्रिएशन में द हाईएस्ट जो क्रिएटर ऑफ अल्लाह है आफाक है यानी आउट ऑफ ह्यूमन, और ह्यूमन खुद है यानी उसके अंदर बाई हिज सेल्फ, यानी उसके अंदर जो है ये चीजें, यानी ये असल में बहस क्यों करना चाह रहे हैं शहीद मुतारी, क्योंकि बहुत सी जो इंसान कामिल की हम बात कर रहे हैं तो इंसान कामिल उसकी जात से शुरू होता है और फिर जात से बाहर की चीजों की तरफ आ जाता है। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे जो इल्म इरफान के अंदर जो चार चार सफरों का तस्करा होता है, चार ट्रेवल्स या सैर जिसको कहते हैं, वही उर्दू वाला सैर से पाठा से निकला है, चार जो सैर हैं, चार जो ट्रेवलिंग करनी होती है, वो चार ट्रेवलिंग की स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है? खुद अपनी जात से शुरू हो रहा होता है। खुद जात को पहचानना जरूरी है क्योंकि क्रिएशन ऑफ अल्लाह है, तो खुदा के रास्ते से ही बेहतर हम जज करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे, लिहाजा जरूरी। एक इन द सेम टाइम क्योंकि इंसानी वैल्यूज के बारे में और भी थ्योरीज मौजूद हैं, खुदा के नहीं मानने वालों ने भी बहुत सारी थ्योरीज पेश की हैं, एग्जाम्पल्स भी हैं, उनकी तरफ से भी एक्टिविटीज भी हैं जिससे लोग ज्यादा मुतासिर भी हो रहे हैं आजकल और पहले भी से भी होते आ रहे हैं, तो हमें उसको भी अंडरस्टैंड करना है। तो शहीद मुर्तजा मुतहरी यहां से आगे जो बहस शुरू करने जा रहे हैं वो आफाक अनफुस के ऊपर भी गुफ्तगू करते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं अनफुस के अंदर से, वो जो चार ट्रेवलिंग्स हैं, चार सफर हैं, चार जो सैर हैं उसके हवाले से फिर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू बयान करते हैं, और फिर दोनों का एक एक कंपेरिजन और मुकाबला और तकाबुल करते हैं कि भाई ये जो मुख्तलिफ आपको रास्ते बताए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा रास्ता है जो परफेक्ट है, जिसको हम अपनाएंगे तो हम कमाल की तरफ जा सकते हैं और एक खुदा का एक परफेक्ट इंसान बनकर हम नजर आ सकते हैं, और परफेक्ट इंसान की आइडेंटिफिकेशन वहां से हमें पता चल जाएगा, और हम फिर जो है किसी भी इंसान को जज करना चाहें कि क्या वो परफेक्ट है, कामिल है या नहीं है, या किस लेवल की लेवल का कमाल रखता है, तो इसके बाद हम बेहतर तरीके से जज भी कर सकते हैं, वगरना हमारे पास जो स्टैंडर्ड मौजूद है अफसोस के साथ आजकल, इसमें तो बड़ा डिफिकल्ट है इंसान जज करे, क्योंकि हमारे पास हीरोज बनाए जाते हैं, हमारे पास तो हीरो हीरोइन क्रिएट करके हमारे सामने पेश किया है रोल मॉडल के तौर पर, और ये कहते हैं सक्सेसफुल मैन, सक्सेसफुल वुमेन, परफेक्ट मैन एंड परफेक्ट वुमेन, कितनी एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, आलमी मुकाबले हुस्न कराते हैं कि सबसे हसीन इंसान या औरत कौन सी है, और फिर उसको रोल मॉडल के तौर पे पेश करते हैं, तो शी इज द परफेक्ट वुमन मसलन। इस आप देखें बातें यहां तक आ चुकी हैं, मामलात इस लेवल तक गिर चुके हैं, तो हम कैसे अंडरस्टैंड करें इन चीजों को, इसलिए जरूरी है कि इसको डिबेट किया जाए। वो कह रहे हैं कि देखें, एक जो पॉइंट यहां पर बयान करते हैं, कह रहे हैं कि देखें इंसान और इंसान के अंदर नफ्स जिसको हम कहते हैं, कुछ चीजें ऐसी मौजूद हैं जिसको जो है ना मेटेरियलिस्टिक जो रूल एंड रेगुलेशंस और फार्मूलाज और वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है किसी भी चीज को, किसी भी जो है क्या कहते हैं एग्जिस्टेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए जो मेथडोलॉजीज हैं, उससे कह रहे हैं कि अंडरस्टैंड हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, कह रहे हैं कि ये एक बहुत लंबी स्टोरी है, कहते हैं हम जो है इस वक्त इस डिटेल में नहीं जा सकते, लेकिन कह रहा है मैं कुछ पॉइंट्स मेंशन करूंगा, वो ये है कि जो चीजें मेटेरियलिस्टिक रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक जो है से मैच नहीं करती हैं, उनमें से एक चीज वो इंसानी वैल्यूज हैं जो मेटेरियलिज्म या मेटेरियलिस्टिक जो थ्योरीज हैं उससे बिल्कुल भी मैच नहीं करती हैं, जो इंसान के अंदर वैल्यूज की बात होती है, तो कहते हैं कि तो मेटेरियलिज्म के अंदर वैल्यूज की क्या मतलब है भाई, दूसरे अल्फाज में इंसान की जो इंसानियत का मसला है, कह रहा है कि ये एक ठीक है बजात खुद एक मुस्तकिल मौजू है, लेकिन कह रहा है कि अजीब बात यह है कि आप जिसको भी जिस मौजूद को भी लें यानी किसी भी एग्जिस्टेंस को लें, तो आपको पता चलेगा कि वो सिफत के तौर पर खुद अपने आप से अलग नहीं हो सकता, मसलन एग्जाम्पल देते हैं कोई भी एग्जिस्टेंस है ना, वो अपनी जो सिफत है उसके अंदर जो एक खासियत है उससे वो अलग नहीं हो सकता है, मतलब क्या मतलब ये है कि एक हम लेते हैं एक चीते को, चीता जो है उसके अंदर चीते की अपनी एक खासियत है जो शेर से उसको अलग करती है, बकरी से उसको अलग करती है, जिसको हम कह सकते हैं चीतापन, मसलन उर्दू में कहते हैं ना चीतापन होना, कह रहे हैं कि ये बताएं कि हम चीतापने को चीते से अलग कर सकते हैं, अच्छा, या कुत्ते को कुत्ते की जो एक खास बिहेवियर्स है उसके एक खास जो कुत्तापन है उसको हम अलग कर सकते हैं, अच्छा, किसी और एनिमल फॉर एग्जांपल घोड़ा है, घोड़े की अपनी एक सिफत है सवारी करना हिनहिनाना वगैरह, इसको हम अलग करें दो अलग अलग चीजें बनाएं, इज इट पॉसिबल अवर नॉट, ये कहता है पॉसिबल नहीं है, यानी कोई ऐसा हमें कुत्ता नहीं मिल सकता जो बकरी हो, जिसके अंदर तमाम जो सिफतें हैं वो बकरी वाली हो, मसलन घास चरता है दूध देता है बकरी की तरह मिनमिनाता है, ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है, न कोई ऐसा घोड़ा मिल सकता है जिसके अंदर चीते वाली क्वालिटीज मौजूद हो, क्या ये पॉसिबल है नहीं है, लेकिन इंसान में ये पॉसिबल है, हाँ दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जिसको हमें समझना है, फरमाते हैं कि लेकिन ये चीजें एक ह्यूमन में पॉसिबल है, कैसे हैं, एक इंसान हो जिसमें इंसानियत नहीं है, हैवानियत है उसके अंदर, हम कितना भला इंसान हैवान हो गया था, बर्बरी जो थे वो हैवान सिफत थे, इंसान नुमा हैवान, हत्ता हमारी आदिश को तो कहते ना इंसान नुमा जानवर। कभी आपने सुना जानवर क्या कहते हैं, एक जानवर हो जो इंसान नुमा हो, एक घोड़ा हो जो कुत्ते की तरह हो, यानी एक कुत्ता हो लेकिन बकरी हो, यानी ये चीजें अलग नहीं हो सकती, हमारे पास अलग हो सकती है, यानी मैं हम बाई फिजिकल बाई फेस एंड बाई बॉडी एक ह्यूमन हो, बाई कैरेक्टर हम एक एनिमल से भी बदतर हो। चीता और शेर और ये जो वैशी जानवर है इनका काम क्या है, चीरफाड़ करना। वो नहीं देखते कि बकरी है तो उसका छोटा बच्चा है, उसकी माँ को खाऊंगा तो बच्चा दूध कहाँ से पिएगा, या वो दर्दों को महसूस नहीं करता ना हैवान, उसके अंदर ये जिबलत में मौजूद है ये चीजें। इसी तरह एक घोड़ा है, उस बेचारे को नहीं पता है कि गार्डन माली ने बेचारे ने इतना जबरदस्त गार्डन बनाया है, वो कहता है खाओ सारे, ये जाफरान का फूल है, बहुत हाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कीमती है, इजीली हाथ में नहीं आता, हम खा लिया, उसने घास समझ कर चल लिया। क्या कहते हैं क्या कहते हैं, गधे को जाफरान की क्या कदर है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मतलब ये सारी एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद है। उस बेचारे को नहीं पता कि इस गार्डन को इस फार्म ने कितनी तकलीफ से बनाया है, इससे अगर मैं तबाह करता हूँ, इसकी घास को खा लेता हूँ या इसके फूलों को खा लेता हूँ तो उसको कितनी तकलीफ होगी। लेकिन एक इंसान ये एहसास रखता है, अगर किसी इंसान में ये एहसास ना हो, पॉसिबल है, यस पॉसिबल है, एक घोड़े में अगर ये एहसास आए, ओ अच्छा 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 इसको तो मैं नहीं खाऊंगा, उसको खाऊंगा, ये जाफरान है इसको छोड़ दो उसको खाऊंगा, एक शेर आए उसको कहे अच्छा जी मैं वो बेचारे के पास, क्योंकि इसकी माँ भी है और बच्चे भी हैं तो बच्चों की खातिर मैं इसको नहीं खाता, वो किसी और शिकार के पीछे जाता हूँ, ये पॉसिबल है, नहीं है। ट्रेन हो सकते हैं, ट्रेनिंग दी जा सकती है, लेकिन जो है इन ने बाई नेचर पॉसिबल नहीं है। तो कह रहे हैं कि लेकिन ह्यूमन में ये चीजें पॉसिबल हैं। हम बात क्या करना चाह रहे हैं, मेटेरियलिस्टिक जो पैरामीटर्स हैं या मेटेरियलिस्टिक जो वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है किसी भी एग्जिस्टेंस को अंडरस्टैंड करने की, उसके एतबार से जो इंसान के अंदर वैल्यूज हैं, कदरें हैं, वो जज हो सकती हैं, अंडरस्टैंड हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, या इंसान को भी एज ए एनिमल एंड एज ए अदर एग्जिस्टेंस एक जो है एग्जिस्ट करने वाली चीज समझकर उसी अंदाज से ट्रीट करना हम शुरू कर दें। ये असल में बेसिक जो चीज है वो ये अंडरस्टैंड, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो मेटेरियलिज्म या मेटेरियलिस्टिक जो वे ऑफ थिंकिंग है उसको असल में शहीद क्या करना चाह रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं और उसको एनालाइज करना चाह रहे हैं। बस कहते हैं कि इन चीजों का एक सिलसिला है जो इंसान के मादी ढांचे से तैयार नहीं होती, यानी ये जो वैल्यूज है, इंसानियत है, ये इंसान के मादी जो स्ट्रक्चर है उससे तो प्रिपरेशन इसकी नहीं होती है, क्योंकि ये गैर मादी है, नॉन मटीरियल है, और नहीं ये ऐसी चीजें हैं जिसको आप सेंस जो है फिफ्थ सेंस के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं, छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, चख भी नहीं सकते हैं, अगरचि वो इंसानी है, ह्यूमंस हैं, लेकिन उन्हें महसूस कर सकता है और न छू सकता है। दूसरे लफ्जों में वो मेटेरियलिस्टिक बाउंड्रीज के अंदर आ ही नहीं सकते, मेटेरियलिस्टिक चीजें उसको कैलकुलेट कर ही नहीं सकती, बल्कि फिर इसको नाम क्या दे दें जनाब, हम इसको मानवियात का नाम हम दे देंगे। पेज नंबर 14 में है हम लोग, सॉरी 104 में, इसको हम स्पिरिचुअलिटी, रूहानियात, मानवियात में है। फॉर एग्जांपल दूसरे अंदाज से डिस्कस करें दोबारा, वो चीजें जो इंसान की इंसानियत का मैयार है, यानी वो स्टैंडर्ड जो ह्यूमिनिटी का स्टैंडर्ड है, जब हम कहते हैं कि ये ह्यूमन ह्यूमिनिटी के स्टैंडर्ड पर पूरा उतरता है या नहीं, तो हम कौन सी चीजें परखें। देखें कि इसके दो हाथ हैं, दो कान हैं, दो आंखें हैं, जबान है, मुंह है, इंसानी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है या जो जो शेप और डिजाइन है उसी के मुताबिक है, तो हम कहते हैं ओके ही इज ए ह्यूमन एंड ही हैज ए ह्यूमिनिटी, हम ये कर दें, सर्टिफिकेट पकड़ा दें उसको सिर्फ उसके बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर, नहीं, या हम कोई और चीज तलाश करें कि उसमें ह्यूमन है बाय बॉडी, बाय एक्शन एंड करेक्टर क्या, ये कहना चाहते हैं इंसान को शख्सियत और फजीलत बख्शती हैं। कौन सी चीज बख्शती है? वो वैल्यूज, वो जो ह्यूमिनिटी का एक जो स्टैंडर्ड है, वो असल में इंसान को पर्सनैलिटी भी देती हैं और उसको उसके वैल्यू को भी बढ़ाती है, फजीलत अता करती है। इंसान की इंसानी फजीलत का जो क्राइटेरिया और पैमाना है, वो चीजें हैं जो उसके अंदर होनी चाहिए, फितरत के हाथों या किसी के हाथों में नहीं बनती, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, खुद इंसान के हाथों बनती है। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये था कि हमने एनिमल्स और हैवान के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं उसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज को अंडरस्टैंड किया। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो तमाम हमारी डिबेट्स मेटेरियलिस्ट और नॉन मेटेरियलिस्टिक जितनी भी किस्म के इजम्स हैं उनमें डिबेट करते वक्त ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कीज हैं, ये अगर इंसान हमेशा जहन में रखेगा तो हर चीज को बेहतर तरीके से जज कर सकता है, इवन कुरान मजीद को, इवन बहुत सारी और चीजों, क्योंकि ये फिलोसफी सारी जो बातें कर रहे हैं वो फिलोसफिकल बातें हैं। और लेकिन शहीद का कमाल ये है कि वो इतने हाई लेवल की एकेडमिक डिबेट्स को इतने सिंपल वर्ड्स में एक आम इंसान की अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे लाके बयान कर रहे हैं और बेहतरीन एग्जाम्पल्स के साथ। बस क्या है, इंसान की इंसानियत की क्वालिटी वैल्यू का जो क्राइटेरिया और मैयार है वो उसकी वो इंसानियत का इंसानियत की सिफतें और शख्सियत होना है जो उसकी पर्सनैलिटी को बनाती हैं, और फितरत के हाथों एक या किसी और हाथों में नहीं बनती है, ये वो सिर्फ और सिर्फ कौन बना सकता है, खुद इंसान के हाथों बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मन आराफा नफसहू, अब समझ में आया, मन आराफा नफसहू फकत आराफा आराफा। अल मुख्तसर ये कि इंसान खुद मानवियत का दरवाजा है, यानी वो जो शुरू में ये लफ्ज यूज किया था, खुद ही अपनी रूहानियत, अपनी क्वालिटी, अपने वैल्यू का खुद ही वो डोर है, अपने खुद अपने वजूद के क्या कहते हैं दरवाजे से आलम माना तक पहुंचता है। यानी अपने ही, क्या फरमाया खुदा ने, फरमाया था ना कि सनूरी हम आयातना फिल आफाकी वफी अनफुस की, जो हमने पहले बहस की, उसकी नफ्स के अंदर निशानियां हैं, यानी वो खुद वे द डोर एंड द विंडो टू द स्पिरिचुअलिटी है, ये खुद ह्यूमन है असल में। आठवें इमाम की एक हदीस बयान करते हैं, फरमाते जो कुछ वहां है उसे पहचाना नहीं जा सकता। इमाम फरमाते जो कुछ वहां है उसे पहचाना नहीं जा सकता मगर उसके जरिए जो कुछ यहाँ है, जबकि ये बजाय खुद एक मसला है। मतलब क्या, जो कुछ वहां है कयामत में खुदा के नजदीक आलम मलकूत में कुने हकीकत इलाहिया में, उसे डायरेक्ट कोई और वे नहीं है पहचानने का, फिर कहाँ है, जो दुनिया है। इसीलिए कहा दुनिया आखिरत की खेती बाड़ी है। हम इस दुनिया की मजम्मत के पहलू को ज्यादा आज तक डिस्कस करते आए हैं, लेकिन इसका जो पॉजिटिव पहलूज हैं कम उसकी तरफ हमारी बहस रही है कि इंशाल्लाह किसी वक्त होनी भी चाहिए कि इस दुनिया से हम उसे पहचान सकते हैं खुद अपने वजूद से, यानी वो चीजें जिन्हें इंसानी कदरें कहा जाता है, वैल्यूज कहते हैं, इंसानियत की मानवियत और इंसानियत का जो स्टैंडर्ड और लेवल और क्या कहते हैं शिनाख्त और पहचान और मैयार है, वो कहते हैं कि हैं तो बहुत सारी, लेकिन इन सब में इन तमाम वैल्यूज को एक वैल्यू में खुलासा कर सकते हैं। देखें हम वापस लौट रहे हैं शुरू की बहस को, जो दर्द की तरफ हमने शुरू किया था, अंबिया नबियों और पैगंबरों और अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम और आम इंसानों और रहबर की एग्जांपल दी थी, कह रहे हैं कि ये बहुत सारी वैल्यूज इंसान की हैं, इन सारी वैल्यूज को आप अगर शॉर्ट फॉर्म में डाल दें जैसे कि कल्चर है, तो कह रहे हैं कि वो एक उसके अंदर आ सकता है, वो है दर्द रखना, साहेब दर्द होना। रहबर की एक स्पीच है जिसमें वो फरमाते हैं बेदर्द लोग, कह रहे हैं कि बेदर्द लोग, उन्हें कोई एहसास नहीं है कि माशरे में क्या बिगाड़ हो रहा है नहीं हो रहा है, कम्युनिटी सोसाइटी में क्या तकलीफ प्रॉब्लम ये याद हो रही है नहीं हो रही है, लोग बेदीन हो रहे हैं या दीनदारी की तरफ जा रहे हैं, कोई तकलीफ ही नहीं है। वो बाज़ लोगों के बारे में मौला अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में फरमाते हैं, बाज़ लोगों की पूरी जिंदगी दो पॉइंट पे खत्म होती है, दो पॉइंट के बिटवीन वो सारी जिंदगी गुजारते हैं, पेट और पेट को खाली करने की जगह टॉयलेट, पेट से शुरू होती है और टॉयलेट में खत्म होती है। मौला अली साहब नाज़िम बलागा में फरमाते हैं, बहुत 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 ही मीनिंगफुल वर्ड्स है ये। उनकी सारी एफर्ट, पूरी लाइफ जो स्ट्रगल है वो पेट से शुरू होकर टॉयलेट में खत्म होती है। अल्लाह अकबर। यानी यहाँ बेदर्द लोग हैं, कोई और बीच में सोच और ख्याल और तस्वूर और चीजें नहीं है। अगर है तो भी वो सारी लिंकअप है, उसी से लिंक करने वाली चीजें। बस खुलासा क्या बना हमारी इस बहस का, जो कि 1.5 पे हम हैं, खुलासा उसका ये बना कि इंसान का साहेब दर्द होना और दूसरों के माशरे के दर्द का एहसास रखना एक साइन है कि ये इंसान इंसानियत रखता है, इंसानी क्वालिटी जो होनी चाहिए थी वो रखता है, और दर्द जिस कदर बेहतर होगा, दर्द जितना ज्यादा और अच्छे तरीके से अच्छी क्वालिटी में होगा, वो इतना ज्यादा पता चलेगा कि इंसान कमाल की तरफ जा रहा है, अपनी इंसानियत के अंदर कमाल की तरफ ये शख्स जा रहा है। असल में ये जो चीज है वो अंडरस्टैंड करने वाली थी, वो ये चीज थी। फिर आगे मजीद एग्जांपल्स देते हैं, कुछ एग्जांपल्स देते हैं, उस एग्जांपल्स में एक कुछ चीजें लेते हैं। मिसाल पर कहते हैं कि देखें, ये जो इंसानों में मुख्तलिफ किस्म के दर्द हैं, अब ये दर्द की तो हमने बात की कि भाई इंसान में इंसानियत का दर्द जो है वो असल में तमाम उसकी आला सिफतों का शॉर्ट फॉर्म है। तो कह रहे हैं कि अच्छा फिर ठीक है कि ये जो दर्द है इंसान का, वो इंसानी दर्द किस किस्म का है, क्या है? मसलन कुछ लोगों के लिए बहुत सारे दर्द हैं, गरीबुल वतनी है, इस दुनिया के साथ उसका जो है मैच नहीं कर जाना, इस दुनिया के अंदर एक स्ट्रेंज फीलिंग करना, यानी वो लोगों ने असल में ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं शहीद, डायरेक्ट कुरान की एक आयत बयान करें, एक हदीस बयान करें, मसला खत्म करें ना, हमें क्यों इतना हमने डिबेट करनी और इतनी सारी पढ़ने और सुनने की जरूरत क्या है? असल में ये है कि हम जो सोसाइटी में लाइफ गुजारते हैं वहां इन तमाम पहलू को लेकर हर किसी की अपनी एक इंटरप्रिटेशन है, हर एक ने इसके ऊपर बुक्स लिखी हैं, इंस्टीट्यूट हैं जो एजुकेट करते हैं, टीच करते हैं और लोगों को उस हिसाब से ट्रेन करते हैं या तरबियत करते हैं, कहें पर तरबियत तो कम ही होती है, ट्रेनिंग ज्यादा होती है। तो शहीद के लिए मजबूरी है कि ये सारी डिस्कस करें ताकि हम दुरुस्त आइडेंटिफाई करें, क्योंकि इस दर्द को लेकर और भी आएगा। वही मैंने एग्जांपल दिया, वो जो एक जर्मन खातून थी पाकिस्तान में, जिसने सारी जिंदगी जो है ये कोड और उसके मरीजों के लिए वहीं पर फिर दफन हो गई है, वो भी तो दर्द लेकर वहां पर बैठी थी। हमारे जो ईसाई भाई हैं जो मिशनरी इनकी काम करती थी, उन ऐसे उन जमाने में तो ऐसे मरीजों को का इलाज करते थे जिसके लिए उसके अपने घर वाले उसको निकाल के बाहर कर देते थे, तो वो भी तो एक काइंड ऑफ दर्द ही था ना। इसी तरह जो है और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे दर्द हैं जो इंसान के अंदर है। मैं माजरत चाहता हूं, मैं बस इशारे में बात करूंगा, जब ये रेफ्यूजीज के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा था तो वहां पर कुछ ऐसी एक्टिविस्ट आई जो इन्हीं रेफ्यूजीज के लिए काम करती थी, तो वो उसमें एक अजीबोगरीब वहां पे बातें कर रही थी। जब वो मीटिंग हो रही थी तो कह रही थी कि जी ये रेफ्यूजीज ये सारे यंग लड़के हैं, तो जरूरत है तो इनको चाहिए कि हमें इनकी तकलीफ का एहसास हो रहा है, इनके पास सबके पास गर्ल फ्रेंड्स होनी चाहिए, यानी उनको उस जिस्मानी और सेक्चुअल जो जरूरतें उस हिसाब से दर्द हो रहा था, उनको तकलीफ महसूस कर रही थी, तो वो कह रही थी इनके पास लोकल गर्ल फ्रेंड्स होनी चाहिए, उनकी इस्तलाह में वो रिलेक्ट किया। तो देखें ये भी तो है एक, अब इसको हम कहेंगे गैर इंसानी अमल था, यानी दो जाहिरी तौर पर तो ये बेचारों ने किस हद तक ख्याल रखा, देखे खाना पीना रोटी तकिया सोना बिछोना ओढ़ना अवेयरनेस लैंग्वेज सिखाना ये करना, और प्लस उसके ऊपर कह रहे हैं जी आप लोकल जो है फ्रेंड्स भी बना लें, तो ये भी तो एक दर्द है। तो सो मजबूरी है हम आज की, क्योंकि हम में बहुत से लोग हैं जो ये चीजें सुन, ओ हो देखो असल इंसान तो ये लोग हैं, तो ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि हम दुरुस्त जज करें, तासुब के साथ नहीं, दुरुस्त जज करें। इसलिए शहीद मुतहरी डिफरेंट जो इसकी इंटरप्रिटेशन सोसाइटीज में थिंकर्स, दानिश्वर्स, कल्चर्स, मुख्तलिफ लोगों ने किया है, उसको डिबेट करते हैं। गरीब उल वतनी का एहसास पैदा किया है, कह रहे हैं इश्क पैदा किया, नाला पैदा किया, यानी दुनिया को लेकर कह रहे हैं गरीब उल वतनी का एहसास पैदा किया, असल की जानिब वापसी और अपने हक और खुदा की जानिब वापसी की ख्वाहिश पैदा की। ये जो शायर हैं, उरफा हैं, उलमाए अखलाक गुजरे हैं पहले, सूफीज्म है, उसके अंदर जो है ये इस तरह का एक एहसास पैदा किया जाता है। एक ये मकतबुल फिक्र है, एक ऐसा दर्द पैदा करते हैं, वो दर्द ये है कि हम अपनी असल और हकीकत से दूर हैं, हम गरीब उल वतन हैं, ये दुनिया हमारा वतन नहीं है, हमें वापस अपने वतन की जानिब जाना है। असल हमारा वतन खुदा है, खुदा से हमने शुरू किया था, वापस खुदा की तरफ हमने जाना है। असल हमारा जो है वतन बहश था, हम बहश में थे, हमें बहश से निकाला गया, वापस हमें बहश की तरफ जाना है। देखो हदीस में भी आया है, देखे ये आयतें भी इसी तरफ बयान करती हैं, वगैरह वगैरह है। बहरहाल वो क्या कहते हैं, हमेशा जो है इंसान ये दर्द महसूस करे, इस तकलीफ में रहे, बेचैनी में गुजारे, और इस मकतब फिक्र के नजदीक ये जो इस तरह की बेचैनी और बेकरारी और गरीब उलवतनी का एहसास और ये जो दर्द और तकलीफ है सूफीज्म और बाज इरफानियात के नजदीक और बाज लोगों के नजदीक, तो ये असल में क्या टीच करना चाहते हैं इस दर्द को लेकर, जो एक इंसान की मोस्ट हाईएस्ट जो क्वालिटीज का शॉर्ट फॉर्म हमने दर्द करार दिया, तो ये दर्द को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? तो ये लोग कहते हैं जनाब ये जो दर्द है वो दर्द फकत खुदा से दूरी का दर्द है, हक से दूरी का दर्द, हक के कुर्ब और रब्बुल आलमीन की कुर्बत की जानिब लौट जाने की ख्वाहिश। चिनांची हर इंसान खा वो किसी मकाम, किसी कमाल या किसी नुक्ते तक भी पहुंच जाए, फिर भी यूं ही महसूस करता है कि वो अपने माशूक तक नहीं पहुंचा है, सब कुछ मिल गया जी बस खुदा नहीं मिला। ये दर्द उसके अंदर मौजूद है। कहा जाता है इंसान हमेशा उस चीज का तालिब होता है जो उसके पास नहीं होती है, जब तक वो चीज उसे मुयसर ना हो उसे उसकी ख्वाहिश होती है, लेकिन जब वो उसे चीज उसे मिल जाए तो उसे उसकी ख्वाहिश ना रहे और वो उसे रद्द कर दे, वगैरह वगैरह। एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ यूरोप में किसी मुजस्मे को लेकर, जो है किसी शायर के या किसी थिंकर की एक सोच को, अफलातून के सोच को जो है उसने आर्टिस्ट ने जो है एक मुजस्मे के डाल के बयान किया, उसको भी देते हैं। बस ये एक सोच है, अब हम फिर दोबारा गर्दाब में फंस गए, क्योंकि इधर एक और मकतब फिक्र आया, उसने कहा जनाब बात सही है, मैं बस वाइंड अप कर रहा हूं, बात सही है कि इंसान कामिल के अंदर इंसानियत की क्वालिटीज होनी चाहिए, ये क्वालिटीज की बहुत सारी किस्में हैं, ये भी होना चाहिए, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, इसका शॉर्ट फॉर्म ये है कि वो साहेब दर्द होना चाहिए। अच्छा जनाब ये दर्द किस किस्म का होना चाहिए? हाँ सबसे बड़ा दर्द तो यही है ना जी, वो खुदा से जुदा हो गया है, वहां से आया ना, मलकूत से आया है, बहश में था ना असल तो उसकी जगह, गरीब उलवतन हो गया बेचारा, बहश से निकाला है, फिर क्या करें भाई, यही उसका बड़ा दर्द है जी, इस मसले को हल करना चाहिए, उसके अंदर इस दर्द के पीछे जाके उसको इश्क खुदा में फना होकर जल्द जल्द बहश पहनने की आरजू करनी चाहिए। खूब, तो फिर हम सुबह शाम इसी के पीछे लगे रहे हैं। द क्वेश्चन इज हियर, इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे 106 में, मैं कोशिश चाह रहा था कि 111